तो हम बहुत ही विशेष दिन है और आज के उत्सव का विशेष उत्सव है, हार्दिक स्वागत है। नरसिंहदेव भगवान की जय। हम सबको बहुत ही कृतज्ञ होना चाहिए, जैसे पति विधान समुद्र भगवान जी के पति कल्पना कीजिए, जब तक हम भगवान जी के शरण में नहीं आए थे हमें मालूम ही नहीं था कि नरसिंह चतुर्दशी क्या होता है। आज सर्वे करेंगे पूरे विश्व में कितने प्रतिशत लोगों को मालूम होगा कि भगवान नरसिंह देव हैं, तो बताओ। आज उनसे पूछने के साथ जनता से कि आज क्या दिन है, तो छुट्टी कर संदेह है, लेट उठेंगे छुट्टी करेंगे, बस यही था जीवन, हम सबका यही जीवन था कि संडे है सभी बार है छुट्टी का दिन है, हमारे अपने शरीर के आराम के लिए कर बस, इससे ज्यादा हमारे लोग कोई सोच नहीं। और आज देखिए हम सब यहाँ बैठे हैं और प्रयास करेंगे नरसिंहदेव भगवान का प्रहलाद महाराज का प्रकाश करने के लिए, कितना परम सभा है, पूरे विश्व की जनसंख्या को लिया जाए 0.00000001% पता नहीं कितने कम गिने चुने जीवात्माओं को इस सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप हो सकते हैं ऐसे कौन से परम सौभाग्य की बात है कि मैं मान कर गया नरसिंह भगवान कौन है, उसका गुणगान सुन है, इससे कौन सी परम सौभाग्य की बात है, बहुत विशेष सौभाग्य की बात है, क्योंकि इसीलिए भगवान अवतरित होते हैं। नरसिंहदेव भगवान केवल शैलान महाराज की रक्षा के लिए अवतरित नहीं हुए, नरसिंहदेव भगवान हम सबकी रक्षा के लिए अवतरित हुए। भगवान को हम सब लोग भक्त वत्सल के रूप से जानते हैं, लेकिन भगवान का एक और नाम है जिसका नाम वो है कृपण वत्सल। मगर हम कृपण, कृपण का अर्थ है ऐसी जीवात्माएं जो बहुत कृपण है, नैरो माइंडेड है, जिनकी सोच नया और मीरा तक ही सीमित है, जो बिल्कुल देहात बुद्धि में लिप्त हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य आहार विक्रम है, मैथुन है, ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा जो जन्मों जन्मों अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिनको पता ही नहीं कि जीवन का जीवात्मा का असली ध्येय क्या है, जिनको ये मालूम नहीं है कि जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाएंगे हम किसी भी भौतिक अवस्था में सुखी नहीं रह सकते, तो ऐसे लोग कृपण कहलाते हैं। तो ऐसे कृपणों का भी तो उद्धार करना है, क्योंकि ये भी तो भगवान की संतान है, तो ऐसे कृपणों का उद्धार करने के लिए नरसिंह भगवान अवतरित हो रहे हैं। नरसिंह हम जैसे सब कृपण जीवात्मा और जीवात्मा के उद्धार के लिए भगवान अवतरित हो रहे हैं, बहुत गर्व से बात की बात है। आज हम भगवान नरसिंहदेव को गुणगान करने का प्रयास करेंगे। ऐसे भगवान को किसी गुणगान की आवश्यकता नहीं होती, इजाजत होती उनको हमारे किसी सेवा की, हमारे गुणगान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब भक्त लोग भगवान का गुणगान करते हैं तो भक्तों का महिमा बढ़ जाती है, भक्त भी ग्लोरियस हो जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा भी कोई गुणगान करे, हर जीवात्मा की मेरी इच्छा होती है लोग मेरे गुणगान करें, तो एक ही तरीका है कि हम भगवान के गुणगान में जुट जाए, तो अगर भगवान से जुड़ गए तो सब शुभ ही शुभ है। तो ये जो श्लोक बोर्ड पर लिखा है ये है अध्याय 8 से 7वां स्कंद 8वां अध्याय, क्षमा अध्याय 9 से, जिसमें कि प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव को शांत किया जा रहा है। क्यों शांत किया जा रहा है कि भगवान नरसिंह देव जी अवतरित हुए हिरण्यकश्यपों में वध किया, बहुत ही क्रोध है, बहुत क्रोध है, उनके क्रोध का वर्णन 8वें स्कंद में बताया गया है कि वो इतने क्रोधित थे कि उनके सिर के बालों से बादल हिलकर इधर उधर बिखर गए, उनकी जलती आंखों से आकाश के नक्षत्रों का तेज मंद पड़ गया, उनके श्वास से समुद्र क्षुब्ध हो उठे, उनकी गजना से संसार के सारे हाथी भय से चिघराने लगे। नरसिंह भगवान जी के सिर के बाल से वायुयान बाह्य आकाश का कुछ लोगों में जा गिरे, भगवान के चरण कमलों के दाब से पृथ्वी अपनी स्थिति से छिटकती प्रतीत हुई, उनके असहाय बल से सारे पर्वत ऊपर उछल गए, भगवान के शारीरिक तेज से आकाश तथा समस्त दिशाओं का प्राकृतिक प्रकाश घट गया। तो बहुत क्रोधित थे भगवान सिंह, क्यों इतना क्रोध आ रहा था उनको, उनको क्रोध इसलिए आ रहा था कि उनके सबसे प्रिय भक्त प्रहलाद के प्रति बहुत बहुत उनको तंग किया गया था, उनका बहुत कष्ट प्रदान किए गए थे, जब किसी वैष्णव के को दुखी किया जा रहा है तो भगवान को बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है, इतना क्रोध क्षमा जाने का प्रयास करें एक बार जीवात्मा जब अपने क्लोज आता है तो हमारे आंखें बड़ी हो जाती हैं, हमारी छाती फूल जाती है, श्वास हम तेज तेज देते हैं। हम तो भगवान के अंश हैं, बहुत ही शुद्ध अंश हैं। हमारा आकार बाढ़ के अगर आपका 1/10,000वां हिस्सा है तब भी हम क्रोध में पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। भगवान असीमित है, असीमित, इनफाइनाइट। जब उनको क्रोध आएगा तो कितना असीमित क्रोध होगा। वही असीमित क्रोध कैसे जागृत हुआ? क्योंकि उनके प्रिय भक्त प्रहलाद को बहुत कष्ट दिए गए, और जिस व्यक्ति ने कष्ट दिए थे हिरण्यकश्यप, उसको उन्होंने वध कर दिया। उसके बाद भी क्रोध शांत नहीं हो रहा, इतना क्रोध, और जितने भी राक्षस थे आसपास सबका वध कर दिया, लेकिन भगवान अपना क्रोध शांत नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे भक्त प्रहलाद को दुखी किया गया, उसको जितना से कष्ट दिए गए। तो हम सबको बहुत सावधान रहना चाहिए जब हम भक्तों के बीच में रहते हैं, किसी भी भक्त को हम कष्ट ना दें। नरसिंह भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। नरसिंह भगवान का एक नाम है भक्ति विघ्न नाशक। जितने भी विघ्न हमारी भक्ति में आते हैं सबको वो नाश कर सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद ही भगवान के नरसिंह देव के क्रोध का कारण बनेंगे तो हमारे भक्ति के विघ्न को कैसे नाश करेंगे, अभी और विघ्न पड़ेंगे। इसलिए हमें भक्तों के साथ व्यवहार में बहुत सावधान होना चाहिए। तो जब इतना क्रोध हारा था नरसिंह देव भगवान को, तो उस समय वहां पे ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र जी, सारे के सारे गंधर्व, इंद्र, लक्ष्मी जी उपस्थित थे। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि भगवान के निकल जाए, इतना क्रोध था। ब्रह्मा जी नहीं जा रहे थे, शिव जी नहीं जा रहे थे, लक्ष्मी जी को ब्रह्मा जी ने आया कि तुम जाओ। लक्ष्मी जी जो कि विष्णु के विषय सेवा में लगी रहती है, चरणों की सेवा करती रहती है, उनकी भार्या है, लेकिन कभी लक्ष्मी ने भी ऐसा विचित्र अद्भुत रूप देखा ही नहीं था। वो भी भयभीत होगी कि मैं क्यों जाऊं उनके पास। फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को कहा कि आप जाइए। प्रहलाद जी को मालूम था कि नरसिंह भगवान क्यों प्रकट हुए हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने पूछा था कि तुम्हें भगवान विष्णु पे इतना विश्वास है, क्या विष्णु सब जगह सर्वव्याप्त है? और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ प्रहलाद ने बताया, निश्चित रूप से वो सब जगह है, और इस खंभे में भी है, निश्चित रूप से इस खंभे में भी। नरसिंह के भगवान खंभे से प्रकट हुए थे। तो जब प्रकट हुए थे और उनके सामने ही उन्होंने उनके पिता हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो प्रहलाद महाराज की विनम्रता देखी कि वे फिर भी चुपचाप खड़े रहे। वैसे नहीं, वो नरसिंह देव भगवान आप आ गए, मैंने आपको पुकारा, आप आ गए, आप उनके पास चले गए। वो खड़े रहे क्योंकि उनसे वरिष्ठ देवता मन साथ में खड़े थे, ब्रह्मा जी थे, शिव जी थे, इंद्र थे। तो पहले उन्होंने उनको मौका दिया कि ये उनकी प्रार्थना ही करें, वो उनको शांत करें। तो जब तक ब्रह्मा जी ने नहीं बोला, प्रहलाद महाराज वहीं खड़े थे। और जब प्रहलाद महाराज को बोला गया प्रार्थना करने के लिए, नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए, प्रहलाद महाराज ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूं, ब्रह्मा जी सत्वगुण में, बड़े बड़े देवता ये तो सत्वगुण में स्थित हैं, ये तो भगवान के बहुत ऊंचे ऊंचे भक्त हैं, मैं क्या हूं, मेरा तो असुरकुल में जन्म हुआ है, मैं तो तमोगुणी व्यक्ति हूं, मैं कहां भगवान का गुणगान कर पाऊंगा। ये उनकी विनम्रता है, मैं इस योग्य ही नहीं हूं कि भगवान का मैं गुणगान कर सकूं। वास्तव में हम सबको भगवान से अवश्य प्रार्थनाएं करनी चाहिए, भक्ति पूर्ण रूप से प्रार्थनाओं पर आधारित है, पूर्ण रूप से प्रार्थनाओं पर आधारित है। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो बताया जाता है हम ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करते हैं, बिना प्रार्थना किए हम ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या समझते हैं कि भगवान सर्वोत्तम है, भगवान असम भोजन है, भगवान से ऊंचा और कोई है, और मैं सबसे शुद्ध हूं, मैं बहुत गिरा हुआ हूं, मैं बहुत शुद्ध हूं, और भगवान बहुत महान है। इस चेतना में हमें प्रार्थना करना चाहिए, और मैं पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर निर्भर हूं, पूर्ण रूप से। जब तक हम दीन और हीन नहीं होंगे हमारा आध्यात्मिक जीवन सफल नहीं हो सकता। आध्यात्मिक जीवन पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर है, और कृपा हमें हृदय से मांगनी होगी, प्रार्थना हृदय से करनी होगी। तो प्रार्थना कैसे करेंगे? हम प्रार्थना की आवश्यकता तभी होगी जब हम अपने आपको दीन और हीन समझेंगे। जब हम अपने आपको दीन और हीन पाएंगे ही नहीं तो क्यों प्रार्थना करेंगे? जब हमें अपनी शक्तियों पर, अपनी योग्यता पर विश्वास होगा तो मुझे भगवान की तरफ कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो भक्ति योग नहीं है। भक्ति योग तो पूर्ण रूप से कृष्ण की कृपा पर निर्भर है। तो हमें बहुत ही दीन और हीन होकर कृष्ण की कृपा को अपने प्रति आकृष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज अपने उदाहरण से भी सिखा रहे हैं। तो बड़े बड़े देवता गण के अंदर ये हिम्मत नहीं हुई, साहस नहीं आया कि भगवान नरसिंह देव के क्रोध को शांत कर सके। प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के छोटे से बाल उन्होंने नरसिंह भगवान को प्रणाम किया और फिर नरसिंह भगवान तब ये श्लोक नारद मुनि जी बता रहे हैं युधिष्ठिर जी को
स्वपाद मूले पतितं तद्वतम् विलोक्यते वा कृपया परिमृता उत्थाप्य तक्षीर ददाकरं भुजम्
उसका अनुवाद मैं पढ़ लेता हूँ। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। जब नरसिंह जी ने देखा कि छोटे से बालक प्रहलाद महाराज ने चरण कमलों पर साष्टांग प्रणाम किया है तो वे अपने भक्त के प्रति अत्याधिक भाव विभोर हो उठे। प्रहलाद को उठाते हुए उन्होंने अपना गर कमल उस बालक के सर पर रख दिया। उनका हाथ उनके समस्त भक्तों को अभय ध्यान करने वाला है। तो देखिए प्रहलाद जी का सौभाग्य देखिए। नरसिंह भगवान जो इतने क्रोध में थे उन्होंने क्या किया, अपना हाथ प्रहलाद के सर पर रखा। प्रहलाद प्रहलाद दाई में उन्होंने प्रहलाद को अहलाद दिया। अहलाद का मतलब क्या है, आनंद। और प्रहलाद का क्या है कि पहले से ही आनंद में है। प्रहलाद जो हमेशा ही आनंद में रहते हैं लेकिन उनको भी आनंद दिया, जो हमेशा आनंद में रहते हैं उनको भी आनंद दिया। पहला पहला दाई ने ये सौभाग्य लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं होगा। लक्ष्मी जी हमेशा उनके चरणों की सेवा में लगी रहती हैं लेकिन भगवान ने कभी भी उनके शीश पर अपना हाथ नहीं रखा। लेकिन यहां पर पहला जो कि असुर कुल में जन्म पैदा हो गए उनके शीश पर भगवान ने हाथ रखा। तो इसका क्या अर्थ है कि भक्ति ये निर्भर नहीं करती भारत जन्म किस कुल में हुआ है। भक्ति इतनी महान है कि कोई किसी भी कुल में जन्म पैदा होकर के चाहे स्त्री हो चाहे क्षुद्र हो चाहे वैश्य हो चाहे चंडाल हो और भक्ति करके भगवान को इतना प्रसन्न कर सकता है कि भगवान उसको लक्ष्मी जी से भी ऊपर का स्तर दे देते हैं। लक्ष्मी जी से ऊपर का स्तर दे दिया प्रहलाद महाराज जो कि असुर कुल में पैदा हो गए। तो प्रहलाद महाराज की जो कथा है, प्रहलाद महाराज आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने मुझे यहां भेजा है ताकि मैं सभी भक्त जीवात्माओं के लिए एक आदर्श उदाहरण बनूं, उनको सिखाऊं कि भौतिक जगत में जीवन कैसे जीना चाहिए। तो हम सबको ये नहीं सोचना चाहिए प्रहलाद महाराज तो नित्य से थे, भगवान के पार्षद थे, वो सब इतने कष्ट सह सकते हैं, हम कहां। नहीं, प्रहलाद महाराज इसीलिए भगवान ने उनको भेजा है, भगवान अपने पार्षदों को इसीलिए भेजते हैं कि जाओ और सिखाओ भक्त जीवात्माओं को कैसे जीवन जीना चाहिए। तो एक शुद्ध भक्त हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मार्ग में यह कथा सुपन था, प्रहलाद महाराज 12 महाजनों में से हम अगर अध्यात्मिक जीवन में सफल तभी हो सकते हैं कि हम अपना जीवन बिल्कुल महाजनों के बताए हुए रास्तों पर चलाएं। हम अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का संग प्राप्त कर सकते हैं उनके दिए हुए आदेशों का पालन करके, उनके द्वारा दिए हुए रास्ते का अनुसरण करके हम उनकी कृपा को उनका संग व्यक्तिगत संग प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने अपने चरित्र से दिखाया कि हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए। क्यों नहीं प्रिय हो गए वो नरसिंह भगवान के, क्यों नहीं, कितने कष्ट सहे उन्होंने फिर भी उनकी भक्ति में दृढ़ता बनी रही। प्रहलाद महाराज दृढ़ व्रत थे कि हर परिस्थिति में मुझे भक्ति करनी है। प्रहलाद महाराज ने हमें सिखाया कि भक्ति किसी भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं है। अहेतु की आप्रतिहता ये जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म है। भक्ति किसी भी भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं है। प्रहलाद महाराज की भक्ति माँ के गर्भ से ही शुरू हो गई थी। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। जब हिरण्यकश्यप मंदार पर्वत पर तपस्या करने गया था, किस लिए तपस्या करने गया था कि मैं अमर हो जाऊं और अमर होकर विष्णु को वध कर दूं, क्योंकि विष्णु ने मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया है। तो मंदार पर्वत पर वो खूब तपस्या कर रहा था। उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। देवताओं ने सोचा हिरण्यकश्यप इतना बड़ा राक्षस है, इसकी पत्नी के घर में निश्चित रूप से एक और राक्षस पैदा हो रहा है, तो क्यों ना हम इसका अपहरण कर ले और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसका वध कर ले। तो सब देवताओं ने कयाधु का अपहरण कर दिया। देखिए उस समय कितने ज्यादा वैदिक संस्कृति हमारी महान थी, आज के युग में ऐसा होगा तो गर्भ के अंदर ही बच्चे का वध कर देंगे। कंस ने भी देवकी के गर्भ में बच्चों का वध नहीं किया। बड़े बड़े असुरों के अंदर भी इतने एथिकल थे वो, इतने एथिकेट्स थे। लेकिन आज के युग में कलयुग में माताएं खुद अपने बच्चों को मार देती हैं। तो हम लोग तो हिरण्यकश्यप और कंस से भी बड़े वध राक्षस हैं।
कंस ने भी देवी घर में बच्चों को नहीं मारा, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी इसके घर से निकला हुआ बच्चा तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। फिर उसने प्रतीक्षा की बच्चे को पैदा होने, फिर मारो। यहाँ पे देवताओं को डर था कि हिरण के शव के पत्नी के घर में राक्षस होगा, तुरंत उस बच्चे को मार सकते थे मां के घर में, नहीं अपहरण कर लेते हैं, चेहरा पहला हुआ तब मारेंगे। तभी वहां पे नारद मुनि आए, उन्होंने इंद्रदेव को बताया कि इनके घर में कोई राक्षस नहीं, बहुत महाभागवत है, तो आप निश्चिंत रहें। फिर नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम में ले गए, उनको शरण दी और कयाधु को आश्वासन दिया कि तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। और फिर नारद मुनि ने उनको भागवत का संदेश सुनाया। तो प्रहलाद महाराज ने भक्ति माँ के घर से शुरू कर दी। माँ के घर के अंदर जीवात्मा होती है, उसका शरीर एक मटर के आकार से शुरू होता है। मटर के आकार से शरीर बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाता है, ये सारे शरीर के विकार है, आत्मा तो वही की वही रहती है। तो भक्ति आत्मा का विषय है, शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। हमें छानना चाहिए कि ये मेरे ऊपर आवरण है, इस आत्मा के ऊपर 24 आवरण है, पांच स्थूल तत्व, भूमि जल अग्नि वायु आकाश, 3 सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि अहंकार, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय और उसके बाद प्रकृति के 3 गुण, इस सब मिलाकर 24 तत्व हो जाते हैं। ये सब आत्मा के ऊपर आवरण है, तो इन सब को हटाना है। इस सब के बीच में मैं हूं जीवात्मा, वो मेरा अपने स्वरूप है। तो मां के घर में थे प्रहलाद महाराज और नारद मुनि जी ने उनको भागवत सुनाई, तो प्रहलाद महाराज ने सुनी, कयाधु ने भी भागवत सुनी। नहीं, कयाधु एक स्त्री थी, उसकी ज्यादा रुचि नहीं, उसकी केवल एक ही चिंता थी कि मेरे पति कब वापस आएंगे बस। तो केवल उसने सुना, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था, लेकिन प्रहलाद महाराज ने बहुत ध्यान से सुना और उसके बाद उनको पूरा याद आया। और उसके बाद वो कभी नारद मुनि से मिले नहीं, कभी नहीं मिले, यानी कि नारद मुनि की बार बार उसको उत्साहित कर रहे हैं, शाबाश बेटे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, समय की बात है, भगवान ने सब एक आश्वासन दे दिया कि हिरण्य कश्यप का वध होने वाला है, लगे रहो डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, उत्साहित रहो, चल रहा है सब समस्याएं हैं, भौतिक जगत है, दुखा ले, कोई समस्या नहीं, लगे रहो। नहीं, एक बार केवल माँ के घर में गुरु के संदेश सुने, बस उसका दृढ़ता से पालन किया। नारद मुनि ने पूरी भागवत सुना दी, सब आत्म तत्व भगवत तत्व प्रकृति सब बता दिया, कृष्ण और हमारा क्या संबंध है सब कुछ बता दिया, और जीव का कर्तव्य केवल भगवान का गुणगान करना। नारद ने यह सुना और बस माँ के घर से निकलते ही उन्होंने भगवान का गुणगान करना शुरू कर दिया। तो हम सीख सकते हैं प्रहलाद महाराज के चरित्र से कि हमें भक्ति में कैसे दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ता का अर्थ है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से विचलित नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी भौतिक परिस्थिति में अपने लक्ष्य को भूलूंगा नहीं, ये दृढ़ता का अर्थ है। भौतिक जगत उथल पुथल का जगत है, भौतिक जगत की तुलना सागर से की गई है, सागर में लहरें होंगी ही होंगी, हम छोटी बात से विचलित हो जाते हैं। आज हमारे बिजनेस में कुछ लेबर प्रॉब्लम हो गई, माला छूट गई, माला में रुचि समाप्त हो गई, पत्नी से झगड़ा हो गया, पत्नी में रुचि समाप्त हो गई, पति ने डांट दिया, पत्नी में रुचि समाप्त हो गई। प्रहलाद महाराज को क्या क्या कष्ट सहने पड़े, हाथी के पांव से नीचे दबा दिया, पहाड़ों से नीचे गिरवा दिया, उबलते हुए तेल में डाल दिया, जहरीले सांपों के कुओं में डाल दिया, बड़े बड़े भालू के ऊपर आक्रमण किया गया, अग्नि के अंदर झोंक दिया गया। प्रहलाद महाराज को मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मारो, चाहे तुम्हें मारो या मेरी रक्षा करो, मैंने तो हमेशा आपकी सेवा ही करनी। तो जीवन सोते हो कृष्ण नित्य दास, आप मुझे मार भी दोगे तो शरीर की मृत्यु होगी, मेरी भक्ति तो चलती रहनी चाहिए, भक्ति क्यों रोकू, भक्ति तो मेरा अपनी धर्म है, उसको मैं क्यों रोकू, बाकी ये सब तो सपना है, भ्रम है, इस सपने के चक्कर में पड़ने में भक्ति क्यों रोकू। ये दृढ़ता है। एक बार 1972 में श्री प्रभुपाद जी की व्यास पूजा थी और प्रभुपाद जी व्यास पूजा के अपने प्रवचन में बता रहे थे कि एक शिष्य का क्या कर्तव्य है, कैसे शिष्य को गुरु की आज्ञा का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। प्रभुपाद बता रहे थे कि हमें भक्ति में शांति व्रत होना चाहिए। तो तब एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि हम भक्ति में अपने जीवन में दृढ़ कैसे हो सकते। प्रभुपाद जी ने उसको देखा, बोला नॉट डिटरमाइंड।
ऋण नहीं हो तो आप पशु हैं। पशु और मनुष्य केवल एक ही अंतर है कि मनुष्य दृढ़ होता है कि हाँ मुझे अपने मन और इंद्रियों को वश में करना है, मेरा मन मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, इसको मुझे वश में करना है। और जब तक हम दृढ़ नहीं होंगे, जब तक हम डिटरमाइंड नहीं होंगे, हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ता की बहुत आवश्यकता है। जब तक हम दृढ़ नहीं होंगे भक्ति नहीं कर सकते, जब भक्ति नहीं कर सकते तो मनुष्य वश में कोई अंतर है ही नहीं। तो डिटरमिनेशन तो हमें इसका पालन तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई विकल्प नहीं। नो डिटरमिनेशन नो भक्ति, वी आर लाइक एनिमल्स, चाहे कुछ भी हो जाए डिटरमिनेशन नहीं छोड़ना चाहिए। डिटरमिनेशन कमजोर है, इसका मतलब हमें ये विश्वास ही नहीं है कि कृष्ण है। फिर कृष्ण ने बोल क्या है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, कौन पे कभी जाना ही नामे भक्त प्रदर्शति, मेरे भक्त कभी नाश नहीं होगा। क्यों घबरा जाते छोटी पापी से, पापी जी का तुम उधर चलती रहेगी, कौन पे पति जाना ही नामे भक्त प्रदर्शति। ये अर्जुन पुत्र ऐलान कर देता है कि चोट पर कि मेरे भक्त कभी नाश नहीं होगा, तो हम क्यों घबरा रहे। हम में से कितने भक्तों को अग्नि में धकेला गया, कितने भक्तों को पहाड़ से नीचे डाला गया, किया गया था। जैसा क्या होता है, माता पिता आने नहीं देते, यही होता था। घर जाएंगे तो एक थप्पड़ मार देंगे, यही होगा। पति क्रोध कर देंगे, पत्नी थोड़ा हो सकता और शोर मचा रहे घर में, इन्हीं छोटी बातों से डर जाते है ना। या बीमारी को समस्या आ जाती है, छोटी छोटी समस्याओं से विस्तृत हो जाते हैं, इन समस्याओं से विस्तृत होने को पशु के समान, पशु के समान। तो हमें इन बातों से ऊपर उठना है। ये तो एक सारी नरसिंहदेव जी का अवतरण इसके लिए हुआ है, प्रहलाद महाराज अपने साथ इसी लिए लाए कि हम बस जीवों को सिखाएं। भगवान एक आदर्श उदाहरण है कि हमेशा हर परिस्थिति में हमें दृढ़ रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज बिल्कुल संभाव, बिल्कुल हर परिस्थिति में संभाव। क्षण और अमर शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, हिरण्यकश्यप ने उनको भेजा कि कुछ शिक्षा, तो बड़ा राजनीति पॉलिटिक्स सिखाया। प्रहलाद महाराज चुपचाप बैठे रहते थे, यानी कि क्षण और अमर से अभ्यास करते थे, चुपचाप बैठे रहते थे। लेकिन जैसे क्लास खत्म होती थी तो बच्चे बुलाते चलो खेलने चले, तो खेलने का टाइम नहीं है, मुझे खेलने के लिए नहीं मिला, आओ मैं तुम्हें अच्छी बातें सुनाता हूँ। और फिर प्रहलाद महाराज सबको आवाज संदेश देते थे और सारे के सारे बच्चे प्रहलाद महाराज से आकर्षित हो जाते थे। अकेले थे वो, अकेले डिवोटी अटेंड्स एवरीवन, भक्त अगर ऐसे प्रोडक्ट हो जाते हैं तो सबको भी आकर्षित करते हैं। तो हमें कभी भी अपने प्रिंसिपल से समझौता नहीं करना चाहिए। कई बार हम भक्ति करते हैं तो अपने आपको अकेला पाते हैं और मैं ना हूं बोलते हैं, सोसाइटी से कनेक्शन टूट गया, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम क्या करें, कोई बात नहीं। राणा मार असरों में अकेले थे लेकिन भक्ति में जुड़ गए और सारे के सारे बच्चे उनसे आकर्षित होते थे। और फिर राणा मार ऐसा संदेश देते थे कि धीरे धीरे सारे के सारे असरों के जो पुत्र थे वो भाग पड़ते, सारे असरों के पुत्र भाग पड़ते। तो ये होती है शक्ति, फिर होती है फोर्स। हम लोगों को अगर हम कृष्ण प्रभुपाद की शरण में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु के सांगों में जुड़े हैं, तो वंशवाद की संदेह नहीं होना चाहिए। इस प्रोसेस में भक्ति योग की शक्ति में वंशवाद की संदेह नहीं होना चाहिए। जब तक संदेह रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, हम 100% कनेक्टेड नहीं होंगे। हम जो प्राप्त हो रहा है कृष्ण आसन प्रोधर्म है, कृष्ण से ऊंचा और कोई नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस भी टॉप मोस्ट है, कृष्णा कॉन्शियसनेस से टॉप मोस्ट और कोई चीज है ही नहीं। हम लोग प्राप्त हो रही है तो फिर किस बात से कर रहा है, टॉप मोस्ट इससे ऊपर कुछ नहीं। इसमें हमें पूरा विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास, कभी हम निश्चित नहीं हो, कभी हमारा कमिटमेंट बना रहेगा। तो मेरा हमारा हमेशा संभाव होते थे, मेरा हमारा बोलते थे कि मुझे नहीं जाना कि मेरा शत्रु कौन है, मेरा मित्र कौन है, मेरे लिए तो सभी मिलते हैं क्योंकि सभी सभी भगवान के अंश हैं। वास्तव में शत्रु और मित्र ये हमारे सारे मन की उपज है, सारे मन की उपज है। हमारे जब कोई कष्ट आता है तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, उसके कारण ये होगा, उसके कारण ये होगा, या फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। हम ये सोचते हैं ये मेरा शत्रु है, इसमें पीछे से मुझे कुछ गड़बड़ करती हो, इसका मन की कल्पना है, अपमान की कल्पना।
کوئی ہمارا مطلب نہیں ہے, کوئی ہمارا شکر نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا شکر ہے ہمارا من, بس اس پہ ہمیں وجہ پراپت کرنا ہے. ہماری اندریاں, انیتت اندریاں, وہ ہمارا شکر. جب تک ہم اندریوں کو سنیم نہیں کریں گے, جب تک ہمیں من کو سنیم نہیں کریں گے, ہم بھکتی کو وجہ پراپت نہیں کر سکتے. تو ہمیں ان انترک شکروں پر وجہ پراپت کرنی ہے. جب ان پہ وجہ پراپت کر لی ہمیں سب کے سب لگے دکھائی. مہاراج نے کبھی کمپلینٹ نہیں کی, کبھی نہیں بولا بھگوان کیا تھا میں ویسا چھوٹا سا بابا جی اکیلا ہوں کتنے کشن مجھے بول رہا, کبھی نہیں کہا. اور نہ ہی میرے بابا نے ہمیں پرارتھنا کی بابا میری رکشا کرو, تاہی مام تاہی مام. بڑے بڑے دیوتاؤں کے اوپر سنکٹ آتا ہے, وہ نشچت ہو جاتے تھے. برہما جی کے پاس جاتے تھے, وشنو کے پاس آتے تھے, بچاؤ بچاؤ. رات کبھی نہیں گئے, کبھی نہیں کہ بچاؤ بچاؤ میری رکشا کرو. ہمیں پورا وشواس تھا کہ بھگوان رکشا کر رہے, اور کبھی بھی ان کے من میں ایک غلط بھاؤ نہیں آئے کہ ہرن کشیپ اصل رہے تھے, وہ دیو کتنا کش دے رہا. کبھی نہیں, جب ہرن کشیپ کے پاس جاتے تھے دنڈ پرنام کر رہے تھے. ہر وقت ہمیں سمجھ چلے گا جو ویکتی ہمیں بار بار منوانے کا پریاس کر رہا ہے وہ ہمیں دوبارہ بلائے اس کو دنڈ پرنام کرے, اپنے بڑے پریم سے بات چیت کرے. پھر کلام والا جاتے تھے the call of all causes کرشنا, سب کاموں کے کارن کرشنا. اگر کوئی ویکتی نمت مات بن کر مجھے دکھ دینے کا, یہ بھی کرشن کی اچھا ہے, تو میں اسے کیوں پیش کروں, کیوں ہے نا. تو ان باتوں کو ہم نے کلام کے ذریعے سے سیکھا. کلام والا جی نے ہر پرستھتی میں ویشن سداچار کا پالن کیا, ہر پرستھتی میں. جب پتا جی ان کو بلاتے تھے پرنام کرتے, پتاجی پرنام کیا, اور پتاجی نے پہلی بار جب ان کو پوچھا بیٹا اسکول میں جا رہے, اسکول میں تو بچہ آیا ہفتے کے درد پیچھے کی باتیں کرے گا, اچھا رہے گا. پانچ وش کا تو بچہ کیا ہے, نسم کا سا کومن سا بچہ ہے. ڈیڑھ لگا کے چار بیٹے تھے, چار میں سے ایک بندہ تھے بڑا اچھا. سناؤ کیا کیا اچھا لگا, کیا سب سے اچھی چیز کیا لگی, کون سی کویتا آپ کو سب سے اچھی لگی, بتاؤ کیا سیکھا. کیا بولتے ہیں وہ, ساتھ من میں اسویر دہینا سدا سمت گندھیم مسکا جو شریر اور شریر سے جڑے بچوں سے آسر کرتے ہو تو ہمیشہ چنتت رہو, سدا سمجھ میں دلی مسائل کہ تم آپ پاس ہو رہے ہیں انت کو پاؤ, تم تو انتھے کنویں میں پڑے ہو, اس کنویں میں پانی نہیں ہے, اس کنویں میں رائے اندر آیا ہے, اس کنویں میں چھوٹے رکھو. آتما کا پتن کرنے والا ہے, اس کو تیاگو, من میں جاؤ, بھگوان کی شرن کر. پانچ وش کا چھوٹا سا بالک اپنے پتا جی کو, کون پتا تھے, ہرن میں وشیا, روٹی ایسے کرتے تھے سارے دیوتا کام جائے, جن کے راجے میں اندر اور سارے گھر کے اندر جھاڑو لگا لیتے تھے, ایسا کھوکھار بھینکر راکشس. اس کا چھوٹا سا بالک یہ شکشا دیا ہے, تم تو اندھے ہی گزرنے پڑے ہو, سدا چنتت رہو گے. جو بھی اس کو چھوڑ کر من میں جاتے اور بھگوان ہری کی شرن گرہ کر اور بھگوان ہری کا نام سنا, وہ تم کے سب سے بڑے شتر. تب ہرن کا شب جوڑ سے ہنس پڑے, کسی بات کا پتا بچہ ہے شاید والا بولا ہے کرتا ہے کہ کوئی ہمارا دشمن آ گیا ہے جو اس کو دوشت کر رہا ہے, تھوڑا خیال رکھو ہے, تھوڑا اس کا سنبھال کے رکھو, اس کے دشمن اس کو غلط شکشا نہ دیتے. تو شرما لے خوب ڈانٹا پیٹا ہے, فالتو بات نکلی ہے, لوگ سکھائیں لوگ بولا کر. کچھ دنوں بعد پھر لے, اب پھر ہرن کا شب نے اس کو اٹھایا, اس کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے پیر سے, اس کو چوما, اس کو سونگا, اس کو سہلا ہے, آپ کے بتاؤ سب سے اچھی چیز کیا سیکھی ہو. تو آپ کے کیا ہوتے ہیں بہان کا شرما پیتا کشن سمرنا آسنا پاس سے ہنسا کے بعد نکلنا نگر بکی کا بن جاتا ہے. اور بولے کہ آج کی دنیا میں رہتی وہی ہے جو اس نکر بکتی سے بھگوان کی ساکشات سیوا کر گیا. تو جب یہ ہرن کشپ نے سنا تو اس سے سہ نہیں ہوا, اس نے کہا تو
کا کوئی بھاگ دوشت ہو جاتا ہے میں روکی ہو جاتا ہے تو اس کو کاٹ دینا چاہیے تاکہ پورا شریر روکی نہ ہو جائے تو اس لیے میں اپنے کاٹ دوں گا اپنے مار دوں گا اس نے آگے دیکھ کے اس کا فل کر دیا جائے تو ہرن کشیپ نے پہلام راج کی غلطی آگے دے دی ہرن کشیپ اور زانس سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سب کچھ تھا سب کچھ تھا اس کے بعد لیکن ہم لوگ اپنا جیون کیوں گیا ہم لوگ اپنے جیون میں ایک بہت ہی سب جانے لگ گئے تھے کسی بھی طرح سے اپنی بھوتک اوستھا کو بدلنے سے ہم سکھی نہیں ہو سکتے کسی بھی طرح سے ہم لوگ پریاس کرتے رہتے ہیں سنگھرش کرتے رہتے ہیں کہ ہماری بھوتک اوستھائیں بدل جائیں بھوتک اوستھا بدلنے سے ہم سکھی نہیں ہو سکتے سکھ پراپت کرنے کا کیول ایک ہی طریقہ ہے انانیہ بھکتی انانیہ کوئی اور اس میں مشرن نہ ہو کیول شدھ انانیہ بھکتی اگر ہم شدھ آنند چاہتے ہیں تو شدھ انانیہ بھکتی کرنی ہوگی ہرن کشیپ اس بات کو نہیں سمجھتا تھا ہرن کشیپ بولا تھا کہ جتنا زیادہ بھوتک سادھو اکتر کر لوں گا میں وشنو کو بد کر سکتا ہوں میں وشنو سے بھی مہان بن سکتا ہوں تو ہرن کشیپ نے یہ پریاس کیا لیکن پہلام مہاراج بس کچھ نہیں تھا پہلام مہاراج پانچ برس کا چھوٹا سا اسہائے بالک تھا لیکن اس کے پاس کرشن شکتی تھی اس کو کرشن پورا وشواس تھا اگر ہم کرشن پر پورن روپ سے سمرپت رہیں گے تو ہمیشہ شانت رہیں گے اگر ہم اشانت ہیں اس کا مطلب ہماری شناختی میں کمی ہے اس کا مطلب پورن روپ سے شناخت نہیں ہے اب مکتی مکتی سدھی کامی سکلے اشانت کشمت نشکام اتیل شام اگر ہم اشانت ہیں بھکتی کرتے ہوئے اس کا مطلب ہماری اچھائیں مشرت ہے بہت ہی اچھائیں ہی ہماری اشانتی کا کارن بنتی ہے ہم پورن روپ سے ہمیں شناختی گرہن نہیں کی ہے اگر ہم پورن ڈھنگ سے شناختی گرہن کریں گے ہم اور شکتیشالی ہو جائے گا ہیومنٹی بریز امپاورمنٹ جتنے زیادہ ہم نمبر ہوں گے پورن روپ سے کرپا پر نربھر ہوں گے اتنے زیادہ ہم شکتیشالی ہوں گے ہرن کشیپ سوچا تھا کہ نہیں میں کرشن پر نربھر کیوں رہا ہوں میں تو کرشن سے مہان ہوں تو وہ کتنا کمزور پڑ رہا تھا کہ آپ کیا ہرن کشیپ حیران ہو جاتا تھا اس پاور میں شکتی کہاں سے آ رہی ہے میں اس کو ہر طریقے سے میں نے اس کو مارنے کا پریاس کر لیا پھر بھی اس کا بل نہیں ہو رہا اور بالکل بھی وچلت نہیں ہو رہا بالکل وچلت نہیں ہو رہا کہ کتنا مہان ہے کہاں کے پاس اتنی شکتی آ رہی ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل امر ہے اور یہ اگر امر ہے تو میرے نشچت روپ سے میرے مرتیو کا کارن بنے گا وہ بھی نہیں لگتا اور پہلا بالکل نربھیک رہے گا کیونکہ پہلا پورن روپ سے وشنو پر نہیں ہوتا میں پورن روپ سے ہر پرستھتی میں کرشن کی کرپا پر نربھر رہنا چاہیے پرہلاد مہاراج جب آگے پرارتھنا کر رہے ہیں تو پرہلاد مہاراج کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے پتا کے ادھارن سے سیکھ لیا کہ سارے کے سارے بھوتک ایشوریہ چٹکی بجاتے سماپت ہو جاتے ہیں کتنا ایشوریہ تھا ہرن کشیپ کے پاس لیکن آپ پائے آپ نے ترنت اس کو سماپت کر دیا تو میں آپ سے کوئی بھوتک ایشوریہ نہیں مانگوں گا مجھے اس کی آوشیکتا ہی نہیں ہے میں تو آپ سے کیول ایک بات ہی مانگوں گا وہ کیا کہ مجھے آپ اپنے شدھ بھکتوں کا سیوک بنا دو بس میری آپ سے اور کوئی بچا نہیں دیکھیے پرہلاد مہاراج کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ اپنے شدھ بھکتوں کا سیوک بنا دو ہرن کشیپ کا بدھ ہو گیا ہے اب ساری کی ساری سمپتی پرہلاد مہاراج کو پراپت ہونی ہے تو پرہلاد مہاراج کے اندر اہنکار بھی آ سکتا تھا چلو ٹھیک ہے اب میرے پتا جی مجھے تنگ کرتے تھے اب ان کا بدھ ہو گیا ٹھیک ہے اب میں بھکتی بھی کروں گا پورے راجے کو سنبھالوں گا بولے نہیں چاہیے پورے راجے والے مجھے آپ یہ آشیرواد دیجیے کہ میں شدھ بھکتوں کا سیوک بن جاؤں پرہلاد مہاراج یہ دروازے سے پرارتھنا کر رہے ہیں کہ میں داساں داس بن جاؤں آپ کے داسوں کا داس بن جاؤں یہ سب سے اچھتم استھتی ہے سوئم بھگوان نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا سوئم بھگوان نے ان کو چاٹا ان کو پریم دیا سوئم بھگوان نے ان کے سامنے میں پتا کا ورت کیا اور بھگوان کو بولے چلو بھگوت دھام چلتے ہیں بولتے نہیں بھگوت دھام کیوں جاؤں میں کیسے بھول سکتا ہوں میں تو اندھے کنویں میں پڑا تھا اور آپ کے بھکت نارد منی نے مجھے بچایا تھا تو میں نارد منی جی کی سیوا چھوڑ کر کیوں جاؤں یہ ان کا ہرد کرتا سے بہت کہ نارد منی نے مجھے بچایا اصل کنویں میں پیدا ہوا تھا
اگر نارد منی جی میرا سندیش نہیں دیتے تو ہم نے منہ نہیں پڑا تھا. تو بھکتوں سے جن سے ہمیں سندیش پراپت ہوتا ہے، جن سے ہمیں گیان پراپت ہوتا ہے، جو ہمارا مارگ درشن کرتے ہیں، ان کے پرتی ہمیشہ کرتوے رہنا چاہیے. ہم کو دیکھا جائے تو اعلان والا ان کے جیون کا لکش ساکشات بھگوان سامنے کھڑے ہیں. رات ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے لال منی کو یاد کرنے کے لیے؟ دھنیہ واد لال منی جی، رکھا جا رہا ٹھیک ہے. میں کیسے جا سکتا ہوں ان کو سیوا کو چھوڑ کر؟ وہ میں تو اندھے منہ پڑا تھا، انہوں نے مجھے اتنا ادھار کیا، مجھے آپ سے درشن پراپت ہو رہے ہیں، ہمیں ان کی سیوا چھوڑ کر کیسے جا سکتا؟ بھکتی کال کے پتا کے تھا، جب تک ہم پتا کے نہیں ہوں گے ہم بھگوان کی کرپا کے یوگی نہیں ہیں. چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو رہا ہمارے ساتھ، ہمیں کبھی اپنے دل میں سے کو بھولنا نہیں چاہیے اور ہمیشہ پتا کے رہنا چاہیے. چاہے ہم بڑے سنتوں میں کیوں نہ پڑے ہو، تبھی ہمیں پتا کے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میرے ساتھ بولا کیوں ہوگا، ہر پرستھتی میں سکھ اور دکھ ہو ہمیں پتا کے رہنا چاہیے. پتا کے نہیں ہے تو ویسے کبھی پرسن جائے نہیں سکتا. پہلا ہمارا ہمیشہ پرسنتا میں رہتے تھے، کبھی وہ پتا کے تھے. اگر ویکتی دکھی ہے تو کیسے پتا کے ہو سکتا ہے؟ دکھی ہے تو سوچ رہے میں پیڑت ہوں، میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، تو پتا کے ہوگا؟ وہ بولے گا بھگوان آپ کی کرپا ہے. نہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں ویکتی بولے میرے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے، اس کا مطلب بھگوان برے ہیں. تو یہ سب کاموں کے کارن تو بھگوان ہے، سب کاموں کے کارن تو بھگوان ہے. اور اگر میرے ساتھ برا ہوا ہے تو کرشن میرے ساتھ برا کر رہے ہیں، اس میں کرشن کوئی ویکتی اچھے ویکتی نہیں ہے. کرشن سب شاستر میں ایسے کہنے کی بات ہے، واسطہ میں نے دیکھا میرا ساکار کا تو یہی کرشن اچھے نہیں ہے. میں نے اتنا پریاس کیا کبھی میرا اچھا نہیں ہو رہا، اس کا مطلب کرشن اچھے نہیں. تو ایسا ویکتی جو پرارتھنا نہیں کرے گا، بھکتی نہیں کرے گا، جپ نہیں کرے گا، وہ ہندو سے نہیں کر پا، وہ ہندو سے کرتا کے نہیں. تو ہمیں ہمیشہ کرتا کے رہنا چاہیے. ساکشات بھگوان کے درشن بھی ہو رہے ہیں کہ رام مہاراج تو ان کو کرتا کے ہے. میں ہر اپنے کی سیوا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ میں ہر پرستھتی میں آپ کے سیوکوں کا سیوا کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ہمارا جیون کا ادیش ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو سیوکوں کے سیوا کے روپ میں دیکھیں. آگے بڑھ کر آنے میں بہت نقصان ہے، ہمارا ساکشات پرکوپ ہے. ہمارا جتنا ہم سیوکوں کا سیوک بننے کا پریاس کریں گے اتنے سرکشت رہیں گے. جتنے زیادہ ہمارے سے اوپر ہوں گے آگے ہوں گے، ان سب کی کرپا ہمیں مل جائے گی. اور سب سے زیادہ کہ میں ہی آگے بڑھ چڑھ کے آؤں، سیدھا ہمارے پر سب سے پہلے آتما ہمارا ہے، سب سے سرکشت ہے سیوکوں کا سیوا. تو یہی پیڑا ہمارا پرارتھنا کر رہے ہیں کہ میں سیوکوں کا سیوا بنا رہا ہوں. بھگوان اپنے بھکتوں کے دوارا دی ہوئی سیوا کو کبھی بھولتے نہیں، کبھی نہیں. بھگوان بہت کرپا کے رہتے ہیں، جیسے ہم بھگوان کے پتی کرتے رہتے ہیں، بھگوان بھکتوں کے پتی کرتے رہتے ہیں. بھگوان اچھے ہوتے ہیں، کبھی نہیں بھولتے. یہاں کے پتی تو احسان فراموش ہوتے ہیں، یہاں پرانے رشتے داروں سے ہم سیوا بھی کریں تو سب کے سب سیوا بھول جاتے ہیں، لیکن بھگوان چھوٹی سیوا کی وہ بھولتے ہیں. اس کا ادھر ہم دیکھیں گے. نرسنگھ بھگوان نے ہرن کشپ کا وعدہ کیا، وعدہ کرنے کا انہوں نے کیا کیا؟ وعدہ کرنے کے بعد نرسنگھ بھگوان کہاں بیٹھے؟ سنہاسن پہ. کس کا سنہاسن پہ؟ تو بڑے بڑے رشی گن بڑے بڑے منتر تنتروں کا جپ کرتے ہیں، بھگوان کا آہوان کرتے ہیں، بھگوان آئیے آسن پہ بیٹھیے. اور ہرن کشپ نے اپنا آسن روپا نہیں کیا، بھگوان آئیے بیٹھیے. ہرن کشپ ان سے یدھ کر رہا تھا، لیکن ان کو مارنے کے بعد بھگوان نرسنگھ دیو سوئم ان کے آسن پہ بیٹھے. تو بھگوان نرسنگھ دیو نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ ہرن کشپ بھی بھگوان کے بھکت ہے. وہ اصل میں کون ہے؟ جے ہے بیکنٹھ کے دوار پر. یہی جے جے تھے تو ہرن کشپ کو بن کے آئے. تو بھگوان نے جے کے دوارا کبھی سیوا کو بھولے نہیں. یہ دوار پر میں سے میری اتنی سیوا کی ہے، اب اس جنم میں بھی میں اس کی سے میری سیوا کی ہے، اتنا ہی اس کرتوے پڑتا ہے. تو بھگوان نے ان کی سیوا کا جو تقیدہ دکھائی اور بھگوان نے ان کے آسن کو گرہن کیا. تو دیکھیے بھگوان کبھی بھی کسی کی طرح سے سیوا کو کھولتے نہیں. اور ایک بھکت ہے ہر پرستھتی میں وہ بھاگے شالی رہتا ہے. حالانکہ جے اصل بڑھ گئے، لیکن وہ پھر تو کہتے ہیں بھاگے شالی ہیں کہ بھگوان ان کے سنہاسن پر بیٹھ گئے. حالانکہ اصل ہے پھر بھی نسی بھگوان ان کے سنہاسن پر بیٹھے. اصل میں بھاگوتم میں جب ہرن کشپ شلوک بولتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے شری ہرن کشپ واچ، श्री हिरण्यकश्यप हुआ, प्रहलाद कुमार श्री हिरण्यकश्यप हुआ, फिर हो सकते हैं इतना बड़ा असुर है, भक्तों का विरोधी है, द्वेषी व्यक्ति, इसके आगे भी श्री लगा रहे हैं। यादव जी क्या कर रहे हैं, श्री क्यों लगा रहे हैं इसके आगे, क्या कारण है? तो श्री का अर्थ क्या है, भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है, क्योंकि उनके अवसर कौन है, महाभागवत है, कृष्ण माता पिता है, जो कि हो सकता है अभी बच्चों का विरोध कर रहे हो कि क्यों भैया तुम क्यों भक्ति कर रहे हो। पहला महाराज से रक्षा को कोई समस्या नहीं थी, बड़ा अच्छा बेटा है, बस इसमें तीन गुण है, तीन भक्ति कर रहे। इसी तरह से आज के बाप ये कहते हैं बड़ा अच्छा बेटा है, स्कूल में फर्स्ट आता था, पता नहीं हर काम में आगे था, पता नहीं क्या हो गया, उसके भक्तों के संपर्क में आया, फिर नारायक हो गया। उनको खाली एक ही दुर्गा नजर आता है कि ये भक्ति कर रहे हैं। अच्छे अच्छे माँ बाप जो स्वयं भक्त हैं अपने बच्चों को भक्ति करने से रोक रहे हैं, बिगड़ जाएगा। ये हम समझते ही नहीं है कि हर कोई अधिकार नहीं बनता कि हम किसी को भक्ति में आगे बढ़ने से रोके, अगर ऐसा करें तो हम हिरण्यकश्यप का रोल करते हैं, न कि भगवान प्रसन्न हो गए इससे, क्रोधित हो गए हमसे, तो उनको बेचारे प्रकार का कोई कसूर नहीं था, यही घोषणा तो भक्ति करता है। इसलिए आज के कलयुग में आप यही सोचते हैं कि बच्चा हमारा भक्ति करता है, बिगड़ गया, ऑफलाइन हो गया, मिसगाइडेड यूज में चला गया, जैसे कोई टेररिस्ट बन जाता है, मिसगाइडेड यूज ना, फटकी दिशा, फटक फटका हुआ युवा, तो दोबारा से ऑनलाइन आना चाहिए इसको, तो क्यों नहीं वो टीवी देख रहा, स्त्रियों के पीछे भागे, मीट खाए, इंफेक्शन वगैरह, ये सब क्या है, ये नॉर्मल जीवन है, यहाँ भी खाना दर्शन देखना, इस उम्र में ऐसा कर रहे हैं, भटक रहे, तो ये है आज का। तो अगर ऐसा कोई माँ बाप ऐसे रोल प्ले कर रहे हैं तो हिरण के शक्कर रोल प्ले कर रहे हैं, तो प्रहलाद का कोई वोट नहीं था, बेचारे भक्ति कर रहे थे, तो आज इन पक्षियों भक्ति करते हैं कि माता पिता उनके आगे तरह तरह की बातें, तो भगवान अपने भक्तों के द्वारा दी हुई किसी भी सेवा को भूलते नहीं, तो हमें बहुत ही दृढ़ता से नरसिंह भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी हैं, प्रहलाद महाराज ने समझाया है कि इस भौतिक जगत में संबंधों को बनाने का कोई फायदा नहीं, आप जितना मर्जी प्रयास कर लो उस भौतिक जगत के समय हम कोई भी संबंध बना ही नहीं सकते। प्रहलाद महाराज ने बताया है ना कि इतिहास में ऐसा कभी हुआ था ना कभी होगा कि इस परिवार में हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करते रहे और जन्म के बीच कैसे छूट जाए, असंभव है। अगर इस जन्म के कैसे छूटना है और असीमित आनंद प्राप्त करना है तो केवल एक ही तरीका है, कृष्ण से संबंध को छोड़ते, जितना ज्यादा हम शरणागति होंगे, जितनी ज्यादा हम सेवा करेंगे, उतना ज्यादा हमारा कृष्ण के साथ संबंध जल्दी स्थापित होगा। हमेशा जीवन का लक्ष्य यही है कि हम कृष्ण के साथ संबंध को जोड़े। प्रहलाद महाराज का कृष्ण से सीधा संबंध जुड़ा हुआ था, इसलिए वो निर्भीक थे, उनको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं थी, उनको सारी की सारी शक्ति कृष्ण से प्राप्त हो रही, वो बिल्कुल नहीं डर। और हम लोग क्यों डर जाते हैं, क्यों व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारा भी संबंध स्थापित नहीं हुआ। हम लोग अपने संबंध अभी इसी संसार में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कभी नहीं होगा, उससे हमें कोई संतुष्टि मिलेगी ना हमारी रक्षा होगी। हमारी रक्षा और हमारे को आनंद प्राप्त होगा जब हम कृष्ण के साथ अपने संबंध को जोड़ेंगे, तो इसके लिए पूरा अवश्य प्रयास करना चाहिए। इस संसार के छोटे छोटे सुख और दुखों से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ये तो आते जाते रहेंगे, इनको रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें तो बस अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने बताया कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है, जल्दी से जल्दी उन्हें भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, जल्दी से जल्दी। क्या आयु बताई थी उन्होंने, कल से हमें भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, 5 वर्ष, ये मैक्सिमम बताइए, मिनिमम है, ये मैक्सिमम है कि ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष सिर्फ लेट नहीं, उन्होंने माँ के घर में भक्ति शुरू कर दी थी और हम लोग 40 के हो जाते हैं, 50 के हो जाते हैं, फिर होगा क्या जल्दी है, अभी क्या जल्दी है, धीरे 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 चलने लो, आराम आराम से, संसार में बहुत सुख है, यहाँ भी सुख की जाते हैं, छोड़े दे रहे हैं, बस आराम आराम से चल रहे, नहीं ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ढीली धारी भक्ति नहीं चलेगी। आप इसे कितने भक्तों के राम वाला की तरह होना चाहते हैं, कितने होना चाहते हैं राम वाला, कोई नहीं होना चाहते, कितने लोग केरल कैसे होना चाहते हैं।
کے کونے میں ہم سب انٹرشن کرنا چاہتے ہیں. انٹرشن کا ارتھ ہے کام اور کامنی کا پوری, کنچن اور کامنی کا پوری. ہم چاہتے بھکتی تو چلتی رہتی لیکن بھوتک سویدھائیں بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے. یہ تو ہم ہماری حالت ہے کہ بھکتی بھی چلتی رہے ساتھ ساتھ میں تھوڑی بھوتک سویدھاؤں کو بھوکتا رہا ہوں. میں دھن کا سکھ اور دھن کا سکھ میں سے چھینو تو نہیں, یہ تھوڑے بہت سکھ دیتے رہو, تھوڑا سا میں کا سکھ تھوڑا سا دھن کا سکھ زیادہ نہیں. اور بھکتی چلنے دونوں ساتھ ساتھ وہاں کھیل پریشر اور تعداد کو ساتھ ساتھ چلانا چاہتے ہیں. تو یہ کمبینیشن کرے ہم نے ہرن بنے پہلا بنانے لگے چلے گا تو ہرن کشن کو مارنا پڑے گا, ان بھوتک اچھا کو ختم کرنا پڑے گا تب جا کے آنند آئے. بھکتی میں آنند کیوں نہیں ہے؟ بھوتک اچھا کو نش کرنا, اس سے ہمیں مکتی پانی ہے. بھکتی وناشک نسل